खुदावंत के जलाली और अब्दी नाम में आप सबकी सलामती हो। आए हम खुदावंत के हुजूर झुकें और अपने अपने दिल की हालत का जायजा लें, अपने आप को जांचें, हर तरह की फिक्र को, हर तरह के बोझ को, हर तरह की उस सोच को जो हमारी तवज्जो को खुदावंत से हटाती है, उन सारी फिक्रों को खुदावंत के हाथों में देंगे, क्योंकि अब ये वो वक्त है कि अपनी सारी तवज्जो को खुदावंद की तरफ लगाएं, क्योंकि हमारी अगर जिंदगी में, हमारी सोच में इस वक्त किस तरह की फिक्र या किसी तरह की परेशानी है, तो जरूर है कि उन सबको भूलकर खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं, क्योंकि यूहन्ना 4 बाब उसकी 23 और 24 आयत में लिखा है कि खुदा ऐसे प्रस्ता ढूंढता है जो उसकी प्रस्तश रूह और सच्चाई से करें, रूह और सच्चाई यानी कि रूह की मामूरी में। और ये बहुत ही जरूरी है, ये ईमानदारों के लिए नहायत जरूरी है कि अपने अपनी हालत का जायजा लें। सो इस बात को जहन में रखते हुए पहला यूहन्ना 1 बाब उसकी 9वीं आयत के मुताबिक अगर हम में कोई गुनाह, गलती, फिक्र, मायूसी या कमी कमजोरी पाई जाती है तो खामोशी में खुदावंद के साथ बात करें, आए खुदावंद के जूर झुकें, क्योंकि वो हमें सारी नाराजगी से पाक साफ कर सकता है। कादर मुतलक खुदा मसीह यसु में आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे सच्चाई के कलाम के लिए जो खुदावंद हर एक ईमानदार के कदमों के लिए चिराग है, तेरे पाक रूह के लिए खुदावंद खुदा जो हर एक ईमानदार के लिए खुदावंद खुदा मौजूद है, इस अजीम उस्ताद और मददगार रूह कुदस के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदा बाप आज का वक्त तेरी नजर करते हैं, अपनी सारी तवज्जो तेरी तरफ लगाते हैं, और आज जो भी पैगाम खुदावंद खुदा हमारी रूहानी सेहत के लिए खुदावंद हम सब के लिए बरकत का बाज बने, सुनने वालों को बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ निकालें लूका की अंजील उसका 19वां बाप। आज हम खुदावंद के कलाम में से चंद एक और गहरी सच्चाइयां इस तमसील में से सीखेंगे। जब मैं इस बात में सोच रहा था, तमसील के बारे में देख रहा था, तो अक्सर जब मैं और भाई जुल्फकार बात करते हैं इस तमसील के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं कि खुदावंद का कलाम अजीम और बहुत ही गहरा और मफीद है और उसकी तह तक हम नहीं पहुंच सकते, और खुदावंद का कलाम वो सूचे मोती है जिसे कहते हैं कि कीमती है, जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी है, और खुदा के कलाम में से हर एक लफ्ज अपने अंदर गहरी सच्चाई रखता है जो हमारी रूहानी सेहत के लिए जरूरी है। खुदावंद का शुक्र हो कि जिसने आज का दिन हमें फिर बख्श दिया इस जमीन पर, ताकि इस दिए हुए दिन में, इस दिए हुए वक्त में उसके नाम को धनबाद कहने वाले बने और उसका शुक्र करें इस मौका के लिए, क्योंकि खुदावंद का हर रोज हमारी जिंदगी के लिए, आप में से हर एक की जिंदगी के लिए उसका एक मकसद है, और ये मकसद हमें जानने की जरूरत है कि वो क्या हमसे चाहता है, क्योंकि खुदा बड़ा मेहरबान और शफीक और शफकत करने वाला खुदा है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हर एक नया दिन जो खुदा हमें देता है, उसका फजल, उसकी शफकत, उसका रहम हमारे लिए तरोताजा मुहैया किया जाता है। सवाल है कि क्यों खुदा ने आज का दिन हमें दे दिया। आज हम सीखेंगे कि क्यों वो हर रोज हमें ये दिन देता है कि हम इस जिंदों की जमीन पर, यानी कि इस जमीन पर जिंदगी बसर करें, और उसने ये जिंदगी हमें क्यों दी है। सो मेरे साथ निकालें इससे पहले कि हम लूका 19वें बाप में से उसकी 13वीं आयत में से चंद एक सच्चाइयों को देखें, मेरे साथ निकालें कि ये दिन, ये जिंदगी हमें दी गई है ताकि उन भेदों को, उन सच्चाइयों को जानें जो हमारी मसीही जिंदगी गुजारने के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मौजूदा दौर मौजूदा दिन बुरे हैं। सो मेरे साथ निकाले इफ्सियों 5 बाप उसकी 15वीं आयत से इस हवाला को देखेंगे, इससे पहले कि हम लूका 19वां बाप उसकी 13वीं आयत में से चंद एक सच्चाइयां सीखें। ये आपको नेहनामा में इस किताब मिलेगी जैसा कि हम इसका मुतालिया कर रहे हैं। इफ्सियों 5 बाप उसकी 15वीं आयत से आपके लिए पढ़ूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 बाप से इस 4 बाप और 5वें बाप के आखिर तक इस बात में पालूस रसूल रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में ही तालीम देता है। तफसील से वो बयान करता है कि हमें ये जिंदगी क्यों दी गई है और इस जमीन पर हमारा चाल चलन यानी कि गुजर बसर कैसा होना चाहिए। सो वो ईमानदारों को सलाह के तौर पर, ईमानदारों को हुक्म के तौर पर वाजिया करता है कि मैं तुम्हें नसीहत करता हूं यानी कि मैं तुम्हें बताता हूं कि दिन कैसे हैं। 15वीं आयत में लिखा है पस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। ईमानदारों से कहता है कि पस गौर करो, जरा सोचो, जरा ठहरो, जरा इस बारे में ध्यान करो कि किस तरह चलते हो यानी कि किस तरह तुम जिंदगी गुजार रहे हो। नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की मानद चलो। पालूस रसूल इफिसस के ईमानदारों को सिखाता है कि तुम जो अपनी हालत को जान चुके हो, जैसा कि हम भी सीख रहे हैं मसीह यसु में हमारी हालत, हमारी मसीह यसु में हालत क्या है कि हम उसकी दुल्हन हैं, हम उसके ले पालक बेटे और बेटियां हैं। हमसे मुराद यानी के तमाम ईमानदार जिसमें बेटे बेटियां बुजुर्ग बच्चे हैं जिन्होंने यसु मसीह को कबूल किया, खुदा के घराने के लोग, शाही काहिन, शाही एलची, उसके बाद उसके बेटे और बेटियां, उसके हम मेरास, उसके दोस्त और उन तमाम नेहमतों बरकतों के क्या मालिक जो यसु मसीह में क्या है हर एक ईमानदार को हासिल। सो पालूस रसूल कहता है कि तुम उन सब चीजों को जान चुके हो। तो 15वीं आयत में कहता है कि तुम गौर करो कि कैसे जिंदगी गुजारते हो। चलने से मुराद जब यूनानी लफ्ज को देखते हैं इसका मतलब है कि कैसे जिंदगी गुजार रहे हो, जरा गौर करो। कहता है कि नादानों की तरह नहीं, नादानों से मुराद वो लोग जिन्हें समझ और हिकमत नहीं कि वो किस तरफ जा रहे हैं, किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। कहता है कि ईमानदारों बल्कि दनाओं की मानद यानी कि तुम अपनी हालत को जानते हो, तुम अपनी जिंदगी का मकसद जानते हो, जैसा कि आज हमने शुरुआत की है कि क्यों उसने आज का दिन हमें बख्शा है। बख्शने से मुराद यानी कि खुदा का ये फजल है, खुदा की मेहरबानी है, खुदा की अनायत है, इसके हम हकदार नहीं हैं, बल्कि ये खुदा का प्यार है कि उसने ये हमें अतिया के तौर पर, तोहफे के तौर पर ये दिन दिया है। और ये दिन उसने इसीलिए दिया है कि हम उसके हजूर झुकें और जाने के हम उसमें क्या हैं और खुदा क्या है और इस जमीन पर हमारा मकसद क्या है। सो कहता है कि दनाओं की मानद चलो यानी कि दनाओं की मानद जिंदगी गुजारो। क्यों? 16वीं आयत में कहता है और वक्त को गनीमत जानो यानी कि वक्त को बहुत ही अहम जानो, वक्त की अहमियत जानो। वक्त से मुराद यानी कि दिन महीने साल जो तुम गुजार रहे हो उसको बड़ी ही अहमियत दो। क्यों? अहमियत से मुराद ये नहीं कि दुनिया में मसरूफ हो जाओ, दुनिया के कामों में। इसका हरगिज मतलब नहीं कि हमें अपनी नौकरियों को और अपने काम काज को छोड़ना है, नहीं, इसका मतलब हरगिज ये नहीं, बल्कि दुनिया को अपनी मसीही जिंदगी में आगे ना लाओ, दुनिया की चीजों को अहमियत ना दो। कहता है और वक्त को गनीमत जानो यानी कि वक्त की अहमियत जानो, अपनी जिंदगी के मकसद को जानो, जिंदगी में दिए हुए वक्त को जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बुरे हैं और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जैसा कि हम इस दौर में जो जिंदगी गुजार रहे हैं आप अपने इर्द गिर्द दे सकते हैं कि वक्त के मुताबिक आप दे सकते हैं कि किस तरह किस तरह गुनाह, किस तरह दूसरी चीजें बढ़ रही हैं, तारीकी बढ़ रही है, किस तरह हर तरफ बेचैनी है, किस तरह इस दम तोड़ती हुई दुनिया में लोग खोए हुए हैं, लोग किस तरह अपतरी का शिकार हैं, लोग किस तरह बहुत सी क्या है बातों में मुबतला है जो के उनकी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। और इसमें बहुत से मसीही ईमानदार भी शामिल हैं क्योंकि वक्त की अहमियत को यानी के वक्त की कदर नहीं कर रहे, वक्त को जाया कर रहे हैं। और पालूस रसूल कहता है कि दिन बुरे हैं। दिन क्या क्यों बुरे हैं? क्योंकि हर तरफ शहवत परस्ती, नाफरमानी, घमंड, हसद, बोगज और बहुत तरह की बातें पाई जाती हैं। और ये किस लिए हैं? रूहें कलाम खुदा के सच्चाई से, कलाम खुदा की रूहानी गुजा से क्या हैं? खाली हैं। यानी के ईमानदार हालांकि ईमानदार खाली पन की जिंदगी गुजार रहे हैं। और कहता है दिन बुरे हैं, और कहता है इस सबब से नादान ना बनो, यानी कि बेवाकूफाना या अहमकाना जिंदगी ना गुजारो, बल्कि खुदा की मर्जी को समझो के क्या है, खुदा की मर्जी को समझो के क्या है। और उसके आगे पालूस रसूल जो उस वक्त के मुताबिक और आज के मुताबिक क्या बात कहता है कि हम खुदा की मर्जी को किस तरह जान सकते हैं? जब हम होश में होंगे, जब हमारा तवाजन, जब हम रूहुल कुद्दस के इख्तियार और ममूरी में जिंदगी गुजारेंगे। क्योंकि मिसाल के तौर पर यहां पर देखते हैं 18वीं आयत में, और शराब में मतवाले ना बनो, यानी के शराब में चूर हो जाना। इंग्लिश में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वाइन लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि उसमें चूर, उसमें भरपूर, उसमें मतवाले नहीं होना, क्योंकि इससे बदचलनी वाकया होती है। बदचलनी क्या है? जिस्मानी कामों का वो फल है जो रूहुल कुद्दस की अलहदगी से किया जाता है। सो कहता है कि नादान ना बनो इस बुरे दिनों में। बुरे दिनों से मुराद कि बुरे दिनों में क्या होगा, मेरे साथ एक हवाला देखें। क्यों कहता है कि नादान ना बनो? क्योंकि वक्त क्या है, दिन क्या है, बुरे हैं। इसलिए वो कहता है कि दिन की अपनी जिंदगी की अहमियत को जानो कि क्यों तुम्हें ये दिन दिया गया है। मेरे साथ एक हवाला निकालें तो फिर हम अपने बुनियादी हवाला के पर सीखेंगे। दूसरा तमोथियस 3:3 उसकी पहली आय से, यहां पर पालूस रसूल कहता है कि दिन बुरे हैं और नादान ना बनो क्योंकि ये क्या है, दिन बुरे हैं। नादान ना बनो, शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाकया होती है। और दूसरा तमोथियस 3:3 में पालूस रसूल तमोथियस को लिखते हुए कहता है, लेकिन ये जान रखो, उस वक्त पालूस रसूल ईमानदार तमोथियस को अपने शिगिर्द को लिखता है कि वक्त की क्या नकाज, वक्त का तकाजा क्या है, वक्त की नकाजत क्या है, वक्त का मत, वक्त कैसे जा रहा है। लिखा है, लेकिन ये जान रखो कि अखीर जमाना में बुरे दिन आएंगे, यानी कि जिस जमाना में हम गुजर रहे हैं बुरे दिन आ चुके हैं और ये बढ़ते ही जाएंगे। और इनकी निशानियां क्या है? जब लोग कलामे खुदा के गजा को अपनी जिंदगी में, खुदा में खुदा को अपनी रूहों में क्या करते हैं, जगह नहीं देते, तो कौन सा नतीजा निकलता है, किस तरह का फल पैदा होता है? कहता है कि बुरे दिनों में ऐसा होगा जैसा कि आप इर्द गिर्द देख सकते हैं। आदमी खुद गर्ज यानी कि अपनी मन मर्जी से जिंदगी गुजारने वाला, जरदोस्त यानी कि रुपये पैसे की भाग दौड़ हवस में जिंदगी गुजारने वाला, शेखी बाज यानी कि अपने आप को दूसरों के सामने बेहतर पेश करना, शेखी मारना अपनी चीजों की, ख्वाबों कितनी भी दुनियावी हो या और चीजें, मगरूर, बदगोई करने वाला, चुगली, हेबजोई करने वाला, मां बाप के नाफरमान, ना शुक्र, کوئی خدا کی شکر گزاری نہیں بلکہ ناشکری، ناپاک، یعنی کہ شہوت پرستی اور گندی سوچوں میں زندگی بسر کرنا. کس طرح؟ کیونکہ طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دگا باز، ڈھیٹھ اور گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے. سو پالوس اصول کہتا ہے کہ جب تم روح القدس کی معموری میں، کلام خدا کی رہنمائی میں کہتا ہے کہ نہ زندگی گزاروں گے تو بد چلنی واقعہ ہوگی، کہتا ہے بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ بجائے کہ ان چیزوں سے معمور ہو جس میں کہ خود پرستی ہے، زردوستی ہے اور شیخی بازی، مغرور، بدگوئی، حسد، بغض، اسد وغیرہ وغیرہ، تمام وہ بری باتیں، بجائے کہ اس سے معمور ہونے کے، روح سے معمور ہونے کی ضرورت ہے. اور جب ہم روح سے معمور ہوں گے، روح سے معمور ہونا ہر روز بہت ضروری ہے. ہر وقت ہمیں اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے، کیا میں روح القدس کی رہنمائی میں چل رہا ہوں، کیا یہ فیصلہ میں روح القدس کی رہنمائی میں کر رہی ہوں کلام خدا کے بنیاد پر کہ مجھے کیا کرنا ہے. خاص کر جب ہمارے ارد گرد ہمارے گھر کے لوگ ہو سکتے ہیں، کلیسیا کے لوگ، دنیا کے لوگ ہو سکتے ہیں جو آپ کو کیا کرتے ہیں، آزماتے ہیں. اور آپ جب غصے میں یا کسی طرح کے برے الفاظ کہتے ہیں تو صرف کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ اس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوں تو جانچنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے انتظام کیا گیا ہے پہلا یوحنا پہلا باب اس کی نامی آیت میں. خاموشی میں خداوند کے حضور جھکنے کی ضرورت ہے. جھکنے کے مراد یعنی کہ خاکسار بن جانے کی ضرورت ہے. آپ خواہ وہ بازار میں ہو سکتے ہیں، کسی بھی جگہ ہو سکتے ہیں، خاموشی میں اپنے اندرونی طور پر خدا سے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ میں نے یہ کمی کمزوری کی ہے، مجھ میں زردوستی پائی گئی، مجھ میں شیخی بازی، مجھ میں مغرور، بدگوئی، چگلی وغیرہ اور کوئی باتیں پائی گئی. سو پالوس اصول کہتا ہے کہ نادان نہیں بلکہ دناؤں کی مانند زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ ہمیں فہم حاصل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ دن برے ہیں. سو میرے ساتھ نکالیں، میرے ساتھ چلیں ہمارا جو بنیادی حوالہ ہے لوکا 19 باب، اس میں سے چند ایک سچائیاں سیکھیں گے جو کہ ہماری رہنمائی کے لیے آج کے پیغام میں ہمارا بہت ہی ضروری حصہ ہے. سو کیوں خدا نے ہمیں یہ آج کا دن بخشا ہے کہ ہم روح کی معموری میں زندگی بسر کریں اور اس کی شکر گزاری کریں. جب ہم روح سے معمور ہوں گے تو افسیوں 5 اس کی 19 آیت سے 21 آیت تک، یہ وہ نتیجہ ہے جو واضح آپ کی کیا ہوگا زندگی میں ظاہر ہوگا کہ آپ سب باتوں میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے خدا باپ کا شکر کریں گے، خواہ دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، کیسا بھی حال ہو. آپ جب روح کی رہنمائی میں ہوں گے تو آپ کہیں گے کہ خدا باپ تیرا شکر ہو، اگر میں دکھ یا بیماری میں سے بھی گزر رہی ہوں یا کسی نے میرے ساتھ زیادتی بھی کی ہے تو خدا باپ تیرا شکر ہو، کیونکہ آپ مسیح کی طرح روح کی رہنمائی میں سوچیں گے اور معاف کرنے کی آپ کے اندر کیا ہوگی، جرات اور طاقت ہوگی، کیونکہ آپ روح القدس کی معموری میں ہیں، اس کے اختیار میں ہیں. اور پھر دوسری بات کون سی ظاہر ہوگی، آپ کے اندر سے مزامیر، گیت اور روحانی غزلیں نکلیں گی اور یہ خداوند کی شکر گزاری کا اظہار ہے، اور یہ روح کی معموری میں دوسرا پھل آپ کی زندگی میں ظاہری طور پر نظر آئے گا، ارد گرد کے لوگ آپ کے چہرے میں، آپ کی زندگی میں اس خوشی کو دیکھنے والے بنیں گے. اور تیسری بات کیا ہوگی، اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع، یعنی کہ آپ خداوند میں، اگر کوئی بیٹی بیٹا ہے تو آپ اپنے ماں باپ کے تابع رہیں گے، अगर बीवी है, क्योंकि आगे यही वो बात करेगा, अगर बीवी है तो वो शौहर के ताबिया रहेगी, शौहर है तो वो मसीह के ताबिया और एक दूसरे के ताबिया, और अगर आप ईमानदार हैं तो आप कलाम खुदा के ताबियादार रहेंगे, रूहुल कुद्दस के ताबियादार रहेंगे, और आपको जो तालीम खुदा का खादम है, खुदा का मुबशर है, आप उसके ताबिया रहेंगे, क्योंकि खुदा ने आपको इसीलिए पास्टर या मुबशर या क्या कहते हैं कि चरवाहा दिया है कि उसकी फरमाबरदारी करें। सो ये फल जाहिर होगा। सो लूका 19वां बाब उसकी 13वीं आयत में से हम सीख रहे हैं कि यसु मसीह यहां पर उस अमीर आदमी की मानद है जो दूर दराज मुल्क को चला ताकि बादशाही हासिल करके आए। बादशाही हासिल करने से बाद हम देखते हैं 13वीं आयत, फिर आए 13वीं आयत पर हम सीख रहे हैं, उसने यानी के खुदावंद यसु मसीह ने अपने नौकरों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 अशरफियां दी और उनसे कहा कि मेरे वापस आने तक लेन देन करना, वापस आने तक लेन देन करना। वक्त की कमी है लेकिन हम इसमें से चंद एक सच्चाइयां सीखेंगे जो कि बहुत ही जरूरी है। यहां पर हम जैसा कि सीख रहे हैं कि आप मसीह में शाही काहिन हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं, ये हमारी मसीह यसु में क्या है, हालत है, ये हमें यसु मसीह में दर्जा मकाम हासिल है कि उसकी दुल्हन है, उसके बेटे और बेटे और उसके एलची हैं जमीन पर, यानी कि उसकी नुमाइंदगी करने वाले। हम इस पर काफी काफी सीख चुके हैं लेकिन आज मैं चाहता हूं कि इस पर गौर करें। और उनसे कहा कि मेरे वापस आने तक लेन देन करना। आज हम सीखेंगे कि वापस आने तक यानी कि ये कौन सा दिन है, यानी कि ये किस वक्त के बारे में बाइबल मुकद्दस यहां पर यसु मसीह तमसीली तौर पर बात कर रहा है, जिस भेद के बारे में यसु मसीह बता रहा है ये क्या है, हम इसे बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। इससे पहले के वापस आने को देखें, यहां पर लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कहा। जब मैं इस लफ्ज के बारे में सीख रहा था तो यूनानी जुबान में इसके जो मतलब निकले वो बहुत ही अजीम मतलब है जो कि इस मौजूदा तमसील में बहुत ही जरूरी है और बहुत ही मुफीद हमारी रूहानी जिंदगी के लिए है, यानी कि फायदामंद है। उनसे कहा, यहां पर जब लफ्ज को देखते हैं उनसे कहा, यसु मसीह यहां पर गुफ्तगू ही नहीं कर रहा कि मैं तुमसे कहता हूं, और ना यसु मसीह यहां पर क्या कहता है कि मैंने बयान दे दिया बात खत्म, नहीं, और ना ही यसु मसीह यहां पर एक मशवरा दे रहा है या अपना ख्याल पेश कर रहा है या जहनी नजरिया या तजवीज दे रहा है, हरगिज इसका मतलब नहीं कि कहा। मिसाल के तौर पर आप अपने बच्चों में से किसी को कहते हैं कि आप जाकर बाजार से फलां फलां चीज खरीद लाएं, तो आपका बेटा या बेटी उसे लेती है कि मेरी अम्मी ने या अबू ने कहा है कि बाजार से दूध लेकर आओ, और ये आपके लहजे पर है कि आप किस तरह उसे कहते हैं, और गां जो आगे जो आपका बेटा और बेटी है वो किस तरह उसे कबूल करता है या सुनता है। मिसाल के तौर पर अगर भाई जुल्फकार अपने बेटे पॉल को कहें कि पॉल आप जाकर नाश्ता कर लो, तो पॉल उसे क्या करेगा कि मेरे अबू ने कहा है, आगे मेरी मर्जी है मैं उसे करूं या ना करूं, ये सिर्फ एक तजवीज या एक इजहार या एक ख्याल है जो भाई जुल्फकार ने पॉल से किया है कि आपको खाने की जरूरत है आप जाएं आप नाश्ता कर लें। लेकिन अगर भाई जुल्फकार इसी बात को कहें कि पॉल अब ये वक्त है तुम्हारे नाश्ते का, तो ये बात क्या है भाई जुल्फकार के इजहार से, उनके अल्फाजों से क्या है, हुक्म के तौर पर है। सो यहां पर भी यसु मसीह कहता है और उनसे कहा, उनसे मुराद उस वक्त तमाम शागिर्द और आज तमाम ईमानदारों को, यसु मसीह तजवीज नहीं बल्कि यसु मसीह क्या कहता है, हुक्म के तौर पर, यानी कि किसी को किसी काम करने का हुक्म देना, फरमान करना, इरशाद करना। और यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरे वापस आने तक लेन देन करना। और यहां पर यीशु मसीह मालक के तौर पर बोलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि एक अमीर आदमी की तरह। और अपने नौकरों से मुराद, यानी कि उसने अपने नौकरों में से 10 को बुलाकर हुक्म दिया है कि मेरे वापस आने तक लेन देन करना, जो काम मैंने तुमको दिया है उसे मैं चाहता हूं कि मुकम्मल करना। और हम इसको देख सकते हैं इसी तमसील में कि दो नौकरों ने, जो के ईमानदारों की जिंदगी को जाहिर करते हैं, जिन्होंने इस हुक्म को बड़े ही अच्छे तरीके से लिया और अपने मालक की इज्जत को सामने रखते हुए उसके हुक्म को और उसके खौफ यानी कि उसकी इज्जत को अपने दिल में रखते हुए उसके हुक्म की तकमील की, और जब आया तो अपने मालक को हिसाब दिया। लेकिन एक नौकर जो कि तीसरा नौकर है, उसने उससे हुक्म नहीं जाना, बल्कि कहा कि मेरा मालिक आएगा तो मैं उससे कह दूंगा कि तू सख्त आदमी था, ये था, फलां था। यहां पर जो बात सीखने की है कि यीशु मसीह हर एक ईमानदार को हुक्म के तौर पर कहता है। हुक्म के तौर पर क्यों कहता है, क्योंकि जो कुछ भी जरूरी है, यहां पर इस तमसील में देखते हैं कि उसने अपने नौकरों में से, यानी कि हर एक ईमानदार उसके खून खरीदे हुए लोगों की बात हो रही है, 10 को बुलाकर, यानी कि एक नंबर के लिहाज से यहां पर इस फिरका लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, फिक्रा इस्तेमाल किया गया है, यानी कि उन नौकरों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 अशरफियां दी। जब हम एक अशरफी को देखते हैं तो यूनानी जबान में इसे मना कहा गया है, जिसका मतलब है कि एक अशरफी 100 दिन की मजदूरी कहते हैं, जिसे के 100 दिन की तनख्वाह देना। और यहां पर हम सीखते हैं कि हर एक ईमानदार को एक जैसा मौका, एक जैसी बरकत, यानी कि रूहुल कुद्दस की मामूरी, बाइबल मुकद्दस तहरीरी कलाम और पास्टर सहबान, और उसके बाद हर तरह का वो दर्जा जो यीशु मसीह में ईमानदारों को जरूरी था उसने दिया, हर तरह की बरकत जो ईमानदारों को मसीही जिंदगी गुजारने के लिए, जो कि मसीही जिंदगी यानी के काम करने के लिए जरूरी थी, उसने मुहैया की। और यहां पर क्या कहता है कि अपने 10 नौकरों में से बुलाकर 10 को उन्हें 10 अशरफियां दी, हर एक को एक जैसा क्या दिया है, एक जैसा रुपया दिया है। और एक शरफी 100 दिन की तनख्वाह, जब हम इसे देखते हैं यूनानी जुबान में, उस वक्त यूनानी के लफ्ज के लिहाज से सीखते हैं तो 100 दिन की तनख्वाह और मजदूरी है जो दी गई, यानी कि उनको 3 महीने 10 दिन तक के लिए उनको एडवांस सब कुछ दे दिया कि तुम, मैं जाता हूं, इससे गुजर बसर करना, हमें रूहुल कुद्दस की कुदरत और वो तमाम नेहमते बरकते जिनमें के 40 नजात पाने पर आपको और हर एक ईमानदार को वो नेहमते बरकते हासिल हैं, और उसके साथ रूहुल कुद्दस की एक नेहमत जो के किसी को खादम खुदा का पास्टर होने की नेहमत मिली है, किसी को मुबशर, किसी को खिदमत करने की, किसी को नसीहत करने की, किसी को हौसला, किसी को इम्तियाज करने की और मोहब्बत करने की, और बहुत से अल्फाज हमें मिलते हैं। तो यहां पर यीशु मसीह ने इंतजाम के तौर पर सब कुछ दे दिया और बाद में क्या दिया है, हुक्म दिया है कि मेरे वापस आने तक लेन देन करना। वापस आने से मुराद खुदावंद यीशु मसीह का दिन, यानी जब वो खुदावंद यीशु मसीह ईमानदारों की अदालत करने के लिए आएगा। याद रखें, अदालत से मुराद ये ईमानदारों की अदालत, मतलब ये कि इंसाफ करने के लिए आएगा। मेरे साथ एक हवाला देखें, दूसरा करंथियों 5 बाप उसकी 10 आयत, क्यों यहां पर ईमानदारों की अदालत है? क्योंकि हम देखते हैं इसी तमसील में, आगे चलकर देखेंगे कि किस तरह जिन नौकरों ने वफादारी की और उनको क्या दिया, अजर दिया, जब यीशु मसीह ने उनको बुलाया, पहले को बुलाया, उससे कहा कि तूने क्या कमाया, उसने कहा कि मैंने एक सिर्फ इसे 10 कमाई, उसका क्या किया, इंसाफ किया और उसे 10 शहरों पर इख्तियार दे दिया। फिर दूसरा आया, उसने 1 से 5 उसको 5 शहरों पर हुक्मरान कर दिया और तीसरे ने कुछ भी नहीं किया और जो उस पर अजर था उससे वापस ले लिया, जो उसकी अशरफी थी उसे वापस ले ली क्योंकि उसने इस्तेमाल नहीं की। सो मैंने कहा कि यीशु मसीह के दिन, यानी जब वो ईमानदारों की अदालत करने को आएगा, मतलब ये कि इंसाफ करने को, दूसरा करंथियों 5:10 क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए हो, ख्वा बुरे, ख्वा भले, ख्वा बुरे। याद रखें, बदला पाए, सजा नहीं, बदला पाए, यानी के अजर दिया जाएगा, यानी के अनाम दिया जाएगा उन लोगों को। किन लोगों को अनाम दिया जाएगा? जिन्होंने जिन्होंने क्या किया, वफादारी से काम किया। बदले का लफ्ज यहां पर इस्तेमाल किया गया है। बदला कब दिया जाता है? जब कोई काम करता है। मजदूरी की मजदूरी किसी को कब दी जाती है? जब वो सारा दिन काम करता है। आप अपने मौजूदा वक्त में देख सकते हैं कि एक मजदूर सारा दिन जब मेहनत करता है तो उसकी मजदूरी उसको दिन के आखिर में दी जाती है। इसी तमसील में यही बात यीशु मसीह कर रहा है, हुक्म देता है कि मेरे वापस आने तक लेन देन करना, और किसी भी ईमानदार के पास ये बहाना नहीं है कि मुझे ये नेमत नहीं हासिल हुई, मुझे ये बरकत हासिल नहीं हुई। हर एक ईमानदार को एक जैसी नेमत, हर एक ईमानदार को एक जैसा मौका और नजात पाने पर 40 नेमतें दी गई हैं, और कोई नहीं कह सकता कि मुझे कम दी गई हैं या उससे ज्यादा दी गई हैं। बेशक जो के खिदमत का तोड़ा दिया गया है वो मुख्तलिफ है, लेकिन नेमतें, मौका हर एक को मसावी है। एक जैसा मौका और वक्त हासिल है, हर एक को रूहुल कुद्दस की मामूरी एक जैसी दी गई है, ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा। वही रूहुल कुद्दस की कुदरत जो खुदावंद यीशु मसीह में थी वो आपको दी गई, वही रासबाजी जो यीशु मसीह की कामल रासबाजी है, वही रासबाजी हर एक ईमानदार को हासिल है। सो यहां पर क्या लिखा है, क्योंकि जरूर है मसीह की तख्ते अदालत के सामने, यानी कि उस वक्त जब यीशु मसीह इंसाफ करेगा और हर एक ईमानदार को क्या करेगा, बदला देगा। और ये बदला क्या लिखा है, अदालत के सामने जाकर हम सब का, हम सब से मुराद तमाम ईमानदारों का क्या होगा, हाल जाहिर होगा, यानी के साफ साफ तौर पर जाहिर हो जाना, इजहार हो जाना, आशिकारा कर देना, वाजिया तौर पर देख लेना, वाजिया तौर पर जाहिर कर देना कि क्या किया, और हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाएगा। याद रखें, बदला पाएगा। आज बहुत से तालीम देते हैं कि लोग सजा पाएंगे। सजा ईमानदारों के लिए नहीं, ईमानदारों के लिए बदला है। सजा उन लोगों के लिए होगी जिन्होंने यीशु मसीह को अपनी जमीनी जिंदगी में क्या किया, इनकार किया, उसको अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, वो लोग सजा पाएंगे। लेकिन ये ईमानदारों की अदालत है जिसमें ईमानदार क्या पाएंगे, बदला पाएंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको मजदूर की मिसाल दी, मजदूर जब सारा दिन काम करता है तो वो मजदूरी का क्या है, हकदार है। और यहां पर लफ्ज बदला का जो मतलब है, यानी कि अनाम देना, अजर देना, किसी को उसके काम के बदले में कुछ देना, ये किन लोगों को हासिल होगा? ये अजर, ये अनाम, ये बदला किन लोगों को हासिल होगा? उन ईमानदारों को जिन्होंने रूहुल कुद्दस के इख्तियार और वफादारी में जिंदगी गुजारी। वक्त हमारे पास थोड़ा है, हम इस पर आगे फिर सीखेंगे, लेकिन वक्त के लिहाज से मैं इस बात को आप पर वाजिया करना चाहता हूं। मजदूरी और बख्शिश में क्या फर्क है? मजदूरी उस आदमी को दी जाती है जो कोई काम करता है, और बख्शिश उसको दी जाती है जो काम नहीं करता, बल्कि उस पर तरस, उस पर मेहरबान होकर, उस पर अपनी शफकत और मोहब्बत का और तरस दिली का इजहार करके उसे क्या दिया जाता है? बख्शिश के तौर पर आप तोहफा कह सकते हैं, आप बख्शिश के तौर पर अतिया कह सकते हैं, आप बख्शिश के तौर पर, जैसे कि सड़क पर चलते हुए भिखारी को, एक मांगने वाले को आप इसलिए भीख नहीं देते क्योंकि उसने आपके लिए कुछ किया, बल्कि इसलिए आप उसे भीख देते हैं कि आप उस पर तरस खाकर उस पर क्या करते हैं, शफकत और मेहरबानी का इजहार करते हैं और उसे कुछ देते हैं। ये है वो बख्शिश जो हम लूका की अंजील उसके 19वें बाप उसकी 13वीं आयत के पहले हिस्सा में देखते हैं कि उसने अपने 10 नौकरों में से बुलाकर उन्हें 10 अशरफियां दी। ये वो हर एक नेमत है जिसमें निजात है, जिसमें अब्दी महाफजत है, जिसमें रूहुल कुद्दस की मामूरी है, जिसमें वो बहुत सी बरकतें हैं जो बख्शिश के तौर पर दी गई हैं, जिसे पालूस रसूल इफ़सियों 2:8 में कहता है, तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं खुदा की बख्शिश है, और हमें निजात और उनमें तमाम नेमतें बख्शिश के तौर पर दी गई हैं। लेकिन अजर वही लोग, वही ईमानदार हासिल करेंगे जो उस अजर के काबल ठहरेंगे, जो अजर पाने के काबल होंगे। जिस तरह के मजदूर सारा दिन मजदूरी करता है और वो आखिर के मजदूरी के दिन, जब दिन ढल जाता है, तो आखिर में वो क्या है? अपनी मजदूरी के बायस उस रकम का हकदार है, उस काम का जो उसने किया है उसका मुआवजा, उसे रुपया देना उसका हक है। और यहां पर मसीही ईमानदारों को क्या कहा गया है? बदला दिया जाएगा। और ये हर एक ईमानदार किस तरह जिंदगी गुजारता है, शुरू में मैंने आपको कहा, रूहुल कुद्दस की मामूरी के बगैर गुजारी हुई जिंदगी, उसके बगैर गुजारी हुई जिंदगी में हमें कोई भी अजर नहीं मिलेगा। इसलिए हर रोज हमें रूहुल कुद्दस की मामूरी में, यानी के मतलब के उसकी रहनुमाई में जिंदगी गुजारने की जरूरत है, क्योंकि जो कुछ आप रूहुल कुद्दस की मामूरी में करेंगे वो खुदा का दिल पसंदीदा होगा, और वो अबदी तौर अबदी अबदी तक अब्दियत तक हमेशा तक महफूज रहेगा। और जो जिस्म में काम किया जाएगा वो सड़ जाएगा, जलाया जाएगा, उसकी कोई अहमियत ना होगी। और इसीलिए पालूस रसूल और इसीलिए लूका तबीब हमें बयान करता है। हम अगले हिस्सा में फिर इस पर सीखेंगे कि हक और बख्शिश में क्या फर्क है। हमें फजल से निजात मिली है और ये खुदा की बख्शिश है, लेकिन उसने हमें एक मकसद दिया है जमीन पर करने के लिए, और वो क्या है कि उसके आने तक लेन देन करना है, ताकि जब वो आए तो आप जब काबले अनाम ठहरें, जब इस काबल ठहरें कि आपको अजर दिया जाए, खास में मैं हूं, कोई भी ईमानदार है, वो ही ईमानदार अजर पाएगा जो इस लायक ठहरेगा कि उसने किस तरह रूहानी रूह की मामूरी में मसीही जिंदगी रूहानी तौर पर गुजारी है। आए हम खुदावंद के हजूर झुके। फैसला हर रोज हमारे हाथ में है कि हम नाफरमानी में जिंदगी गुजारते हैं या फिर फरमाबरदारी में। सजा नहीं बल्कि अजर देने को आएगा। सजा सिर्फ गैर ईमानदारों के लिए है और इनाम सिर्फ और सिर्फ ईमानदारों के लिए है। आए हम खुदावंद के हजूर झुके। खुदा बाप तेरा शुक्र हो तेरे कलाम के लिए। आज जो बीज बोया गया है हम सबके लिए बरकत का बाश बने, सुनने वालों को बड़ी बरकत दे और खुदावन पाक रू सबकी रहनुमाई करे। ये सुमसी के नाम में खुदा बाप ये दुआ मांगते हैं, आमीन।